चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिशे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुतोष तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नयमां चरणान्ति ते। सर्वप्रथम मैं अपने परमाराध्य श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद शिशुन भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात वैष्णवगण वैष्णवीगण उपस्थित माताएं बहनें और बेटियों और बेटों, अभी मैं विदेश से यात्रा कर एक तरफ से पूरब से आरंभ कर पश्चिम तक सारे देशों का, अमेरिका इत्यादि का, ऑस्ट्रेलिया का, फिजी कहाँ कहाँ प्रचार करता हुआ, अमेरिका के विभिन्न देशों में प्रचार करता हुआ वहाँ से अभी 5-10 दिन पहले लौटा था, फिर अभी रशिया गया। वहाँ सनातन धर्म का हम लोगों ने प्रचार किया। विदेशों में 10 आदमियों का मीटिंग में सभा में आना बड़ा कठिन है, हजारों लोग हमारे पीछे पीछे हमारी सभाओं में आते, और बहुत से लोगों ने 250-200 लोगों ने हरिनाम दीक्षा इत्यादि ग्रहण की, गाय खाना, मांस खाना, प्याज लहसुन खाना, गंदे चीजों का खाना छोड़कर, यहाँ तक कि क्रिश्चियन धर्म को भी छोड़कर हमारे सनातन वैदिक धर्म में उन लोगों ने प्रवेश किया। हमारा सनातन धर्म आज का नहीं, जब से पृथ्वी की सृष्टि हुई है तभी से है। हमारे आर्य लोग, माता पिता और हमारे पूर्वज लोग किसी विदेश से नहीं आए, यहीं पर जन्मे। ऐसा नहीं कि जैसा कि जवाहरलाल और लोगों ने माना कि हम लोग भारतीय यहाँ के नहीं है, आर्य लोग ये ईरान और कहाँ कहाँ से आए, ये गलत बात है। सृष्टि यहीं से आरंभ हुई, हम लोग यहीं के आदि बासिंदा हैं, इसलिए बाहर से हम कभी नहीं आए, और तभी से ये सनातन धर्म चल रहा है। बल्कि और विदेशी जातियां जो हैं हम लोगों से बीच बीच में प्रभावित हुई हैं। हमारे देश के प्रचारक लोग वहां पर गए हैं। अभी कैस्पियन सी जो नाम सुनते हैं वो है क्या, कश्यप ऋषि का स्थान है। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में पर्थ है क्या, हमारे पार्थ वहां पर गए। मंगल ऋषि मंगोलिया में। इसी तरह से भारतवर्ष आज जैसा संकुचित भारतवर्ष नहीं था, ये पैसे लेकर के इतिहास की रचना करने वाले ऐतिहासिक लोग नहीं लिख सकते हैं, नहीं जानते, वो नास्तिक हैं। हमारी सभ्यता आदिम काल से है, मनु जी पहले पुरुष हुए, कितने बड़े बुद्धिमान, कितने विद्वान, आत्म को साक्षात्कार करने वाले ऋषि थे। इसलिए हमारा यह सनातन धर्म महान है। किसी भी देश में ऐसा नहीं देखा जाता। अभी जो क्रिश्चियनिटी है, आज से 2000 वर्ष पहले आरंभ हुई, इसके पहले कुछ नहीं था। हमारा ये कुरान इत्यादि 1400-1500 वर्ष से पहले कुछ नहीं था। यह सब पीछे की है। इसी से जैसे समुद्र से निकल करके फिर समुद्र में नदियां मिल जाती हैं, ऐसे हमारे भारतीय संस्कृति से ही मिल करके जो जितने निकट रहे उतने सभ्य रहे हैं, और जिसका हम लोगों की संस्कृति से, वैदिक संस्कृति से संबंध नहीं, वो बंदरों की भांति जीवित रहते थे। खाओ पियो मज रहो, उनकी कोई संस्कृति नहीं, कोई इतिहास नहीं है प्राचीन, किंतु हम लोगों का है। किंतु हमको ये समझना है जो सनातन धर्म है किसको, धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो जैन गतस्य पंथा। हम कभी कभी धर्म की छाया को, सनातन धर्म की छाया को, कभी विपरीत छाया को देकर के समझ लेते हैं यही सनातन धर्म है, किंतु वो सनातन धर्म नहीं है। जिसका कभी विनाश नहीं हुआ, जिसका कोई आदि नहीं है, अंत नहीं है, एक समरस चलता है, वो सनातन धर्म है। इसको समझने के लिए कुछ चेष्टा करनी पड़ेगी समझने के लिए। जिनका जीवन धर्म रहित पशुओं के समान है, खाओ पियो मौज करो मर जाओ, वो लोग नहीं समझ सकते। हमारे मंदिर और ये सब बने हैं इसीलिए कि हमारे सनातन धर्म का प्रचार हो, इसलिए। इसलिए आप लोग थोड़े से मन दे करके सावधानी से सुनेंगे, सनातन धर्म किसे कहते हैं। इसके जानने के पहले आप समझिए, सनातन वस्तु का धर्म सनातन होगा। जो चीज आदि अंत वाला है उसका धर्म सनातन धर्म नहीं होगा। जिसका जन्म नहीं है, जिसका मरण नहीं है, जिसका बुढ़ापा नहीं है, जिसको कोई क्लेश नहीं है, ऐसे वस्तु के धर्म का नाम सनातन है, जो खुद सनातन है। सनातन क्या है? हम इस शरीर को देखते हैं, यह शरीर सनातन है कि नहीं पहले समझो। अभी शरीर जन्म लिया और लेने के साथ ही एक एक पल में, एक एक क्षण में घटता जा रहा है, क्षय होता जाता है। अभी जन्म लिया, अभी बच्चा बड़ा हुआ, थोड़े देने के बाद में युवक हुआ, युवक होने पर शादी हुई, शादी होने के बाद में 50 वर्ष तक चला, इसके बाद में क्या हुआ, अब वृद्ध होने लगा। धीरे धीरे 80 वर्ष तक चलने में पूरा वृद्ध हो जाएगा। 100 वर्ष की आयु यदि जीवित रहे तो लकड़ियों के सहारे चलना पड़ेगा, और इसके बाद में शरीर को त्याग करना पड़ेगा। तो यह शरीर सनातन नहीं हुआ। यह है क्या यह शरीर? बैठो तुम लोग साथ बच्चों को। यह शरीर है क्या? रक्त मांस टट्टी पैखाने का ये गोदाम है। स्नान करने से पवित्र हो जाएगा? ये पवित्र नहीं होगा। क्या है भाई? ये शरीर कभी भी पवित्र होगा? अब ये स्नान करो शरीर में और उसमें टट्टी और क्या क्या चीज पेशाब भरा है कि नहीं, रक्त हाड़ चाम मांस, ये कैसे पवित्र हो सकता है? तो ये सनातन कैसे हो सकता है? इसलिए शरीर से जो कुछ भी होता है वो सनातन नहीं है। इस चीज को समझो। आज जन्म लिया, 10 दिन के बाद में मर गया, गर्भ में ही मर गया, उसका धर्म सनातन नहीं है। सनातन चीज है क्या? इस चीज को समझ। जिसका जन्म नहीं है, जिसका कभी मरण नहीं है, जिसको बुढ़ापा नहीं है, जिसको किसी प्रकार का क्लेश नहीं है, वो है सनातन। वो है क्या? अपनी बुद्धि से समझ में नहीं आएगा, कृष्ण ने वेद शास्त्रों को बनाया है, उसके फॉलो करने से, उसको समझने से हम समझ सकते हैं कि सनातन धर्म क्या है। हमारे वैदिक धर्म की रीढ़ समझो, प्लेटफॉर्म समझो, यह है गीता। महाभारत का सार है, इसमें बतलाया शरीर तो कपड़े के समान है, आज फट जाएगा, कल नहीं रहेगा, किंतु इसके अंदर में आत्मा रहने वाली है, वो क्या है? नैनं छिदन्ति शास्त्रम, नैनं दहति पावकः, नैनं नशोषयति मारुत, अच्छेद्वयम् अक्लेद्वयम् अशिष्यो एव च नित्य सर्वगत स्थाणु रचलो अयं सनातन। जिसके निकल जाने पर यह शरीर सड़ गल जाता है, यह शरीर सड़ गल जाता है, रह नहीं सकता, एक दिन भी नहीं रहेगा, औषधि देकर के रख सकते हैं। अभी मास्को में गया, लेनिन जो मर गया, उसके शरीर को अभी ठीक रखे हैं औषधियों से, अभी उनके जहां पर दफनाया गया वहीं पर उनका भी शरीर रखा गया है, तो उसको तो रख सकते हैं, किंतु प्राण तो है नहीं। इसलिए इसके अंदर में रहने वाला जो है आत्मा है, ये आत्माएं दो प्रकार की हैं, एक अणु आत्मा है और दूसरी है परमात्मा। अणु आत्मा क्या है? उसी गीता में बतलाया, ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन। इस शरीर के अंदर में, इस शरीर के अंदर में बैठ करके ये सुख दुख का जो भोग करने वाला है वो अणु आत्मा है, और उनका जो संचालक है, जो एक होकर के विश्व के सबके आत्माओं के साथ में साक्षी के रूप में है, क्रमण के नियंता के रूप में है, सुख दुख के भोग कराने वाले हैं, वो है परमात्मा। यदि सुनना है तो बच्चों को जरा ठीक से रख करके रखो, नहीं तो अपने भी नहीं सुनेंगे, दूसरों को नहीं सुनेंगे। बैठे बैठ करके सुनो, बैठ करके अभी सुनो, पीछे बतलाए। तो अणु आत्मा हम लोग, अणुओं के नाते भगवान को हम लोग भूल गए, हमारा सनातन जो धर्म था वो भूल गए हम। उस अणु आत्मा जो है वो भी इस शरीर में है और परमात्मा भी इस शरीर में है। जब अणु आत्मा परमात्मा को पहचान कर उनकी सेवा में लग जाती है, इसको कहते हैं सनातन धर्म। आप सेवा नहीं कर रहे हैं अभी मालूम होता है, किंतु आत्मा किसी न किसी रूप में परमात्मा की सेवा करती है, यह अनुभूति नहीं है, इसी को कहते हैं बद्ध दशा। इस चीज को समझिए, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराश। अविनाशी माने विनाश नहीं है, ये आत्मा है इसका भी विनाश नहीं, इसका भी जन्म नहीं है। जैसे सूर्य है, उसकी किरणें दोनों एक समान है, पीछे किरण निकली पहले सूर्य उगा, ऐसा नहीं। इसलिए भगवान के साथ ही साथ में ये जीव ही है, नित्य है, अजर अमर है, अविनाशी है, शाश्वत और सनातन है। इसलिए एक सनातन वस्तु का दूसरे सनातन वस्तु से जो परस्पर प्रीति होती है, इस प्रीति का नाम सनातन धर्म है। संसार में और संसार के बाहर में करोड़ों गोलोक बैकुंठ वृंदावन में ऐसी आत्मा है जो नित्य उनकी सेवा करती है, संसार क्या है वो जानते नहीं, वो जो सेवा वृत्ति है भगवान की, ये इसका नाम है सनातन। और हमारी आत्मा में भी पोटेंसी है भगवान की सेवा करने की, इसका नाम है सनातन धर्म। इसीलिए गीता में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इन सब धर्मों को, जो मन के और शरीर के धर्म हैं, इनको छोड़ करके हमारा शरणापन न हो, यदि इसे कोई दोष भी होगा तो उन दोषों को हम क्षमा करें, इतना बड़ा आश्वासन देते हैं कृष्ण। इसलिए
जीवों का कृष्ण के प्रति, भगवान के प्रति जो सेवा की वृत्ति है, ये इसी का नाम सनातन धर्म है। इसके साथ साथ में एक चीज और समझना है, ये कृष्ण ही जगत के मंगल के लिए बीच बीच में अवतार लेते हैं। जैसे नृसिंहदेव, कल्कि देव, वामन देव, रामचंद्र जी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, बलदेव प्रभु, ये सब अवतार हैं। विष्णु हैं, ये सभी वही एक ही भगवान हैं, अलग अलग नहीं हैं। इसलिए इनकी सेवा भी नित्य धर्म है, सनातन धर्म ही है। किंतु कुछ दोनों में वैशिष्ट है। नृसिंह जी की सेवा करने से वह फल नहीं होगा जो नंदनंदन कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन है उनकी सेवा करने से होगा, इसको भी समझो। है एक ही तत्व, एक ही तत्व, चंद्र एक है, उसमें 16 कलाएं होती हैं। दूज के दिन में चांद थोड़ा सा दिखता है और पूर्णिमा के दिन में पूर्ण रूप में, किंतु चांद कभी ऐसा नहीं होता जो कि उतना कटा हुआ हो, ये छाया से दिख पड़ता है ऐसा, किंतु वो भी उस दिन भी पूर्ण ही है। अब ये दूज को जो चांद दिखता है और पूर्णिमा का जो चांद दिखता है, दोनों में कोई अंतर है कि नहीं? एक ही वस्तु है, किंतु उसकी रोशनी जो देता है उसमें जो शीतलता आती है वो बराबर नहीं होती। इसी तरह से राम, नारायण और दूसरे जितने अवतार हैं वो सब भगवान ही हैं, एक ही तत्व, किंतु कोई एकम का चांद, कोई दूज का, कोई तृतीया का, चतुर्थी का, उनकी उपासना का अलग अलग तारतम्य है, एक नहीं है। जो एक बतलाते हैं इस विषय को अच्छी तरह से नहीं जानते। सब एक होने पर भी तत्त्वतः उसके फल में, आराधना के फल में कुछ अंतर है। इसको और भी ठीक से समझिए, भगवान जिन जीवों में अपनी कुछ शक्ति देकर जगत का कल्याण कराते हैं उनको कहते हैं विभूति। उसको क्या कहते हैं? जैसे नारद में भक्ति शक्ति देकर के प्रचार कराया, नारद जी भगवान की विभूति हैं। ब्रह्मा जी में शक्ति देकर के संचार करके जगत का सृजन कराते हैं, ये विभूति हैं। शंकर जी में वो शक्ति देकर के जगत का संहार करते हैं, इसलिए शंकर जी विभूति हैं। इंद्र इत्यादि जितने देवता हैं, सूर्य में शक्ति कहां से आती जो ये तपते हैं, प्रकाश देते हैं, जीवन दान करते हैं, ये कहां से आई? इनमें अपनी शक्ति नहीं है, कहां से आई? भर्गो देवस्य धीमहि, कृष्ण देवस्य भर्गस्य धीमहि। कृष्ण की जो शक्ति है पराशक्ति, वो सूर्य को यह शक्ति देती है, तब सूर्य चमकता है, प्रकाश देता है, इसलिए सूर्य भी विभूति है, चंद्र भी विभूति है। इनको यथा योग्य सम्मान देंगे, क्योंकि तृण को भी हम सम्मान दे सकते हैं, उसमें भी प्रभु है, जीवात्मा है। तो इनमें जो शक्ति का संचार करके जगत का जो कल्याण करा रहे हैं, इनको भी हम यथा योग्य करेंगे, सम्मान देंगे। किंतु इस चीज को भी समझ रखो, इनकी उपासना करने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। क्या होता है इस चीज को समझो, हिमालय में वर्षा हुई, ये वर्षा कहां से हुई, पानी कहां से आया? समुद्र का पानी भेपर होकर के बादल बना है, और पर्वत शिखरों में, पहाड़ियों में, जंगल और पहाड़ों के वजह से वहां उनमें नमी आई और वहां पर प्रचुर वर्षा हुई। और वर्षा होने से क्या हुई, वहां पर तो पानी जमेगा नहीं पहाड़ों में, ये गंगा, जमुना, सिंधु, कावेरी इत्यादि जो नदियां हैं उन पर्वतों के वर्षा होने पर वही पानी बरस करके नीचे की तरफ में आकर के नदियों के शक्ल में दूर समुद्र में मिल जाता है। हम जो दूसरे देवताओं की जो उपासना करते हैं वो भगवान को ही मिलती है, भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं। जैसे पर्वत का पानी नदियों के रूप में कहां पहुंचा, अपने उद्गम स्थान समुद्र में पहुंच गया, किंतु पर्वत मिला क्या समुद्र में, पर्वत तो जहां का तहां रहा है। इस चीज को खूब भली भांति समझिए, पर्वत का पानी नदियों के माध्यम से चला आया समुद्र में और फिर वहां से फिर बादल के रूप में गया, सब जगह वर्षा हुई, फिर वो समुद्र में आया। रोटेशन चल रहा है, साइक्लिक ऑर्डर। किंतु जहां पर पानी वर्षा हिमालय में, वो हिमालय पर्वत समुद्र तक नहीं गया। वैसे ही जो देवताओं की उपासना करने वाले हैं उनकी भक्ति या जो जिस देवता का अर्चन करते हैं वो तो कृष्ण को मिल जाएगा, क्योंकि जितनी भी उपासना है अंत में उसका फल भगवान ही लेते हैं, दूसरा कोई ग्रहण कर नहीं सकता, उनमें क्षमता नहीं। इसलिए उनका फल तो आया यहां भक्ति, जो उनकी सेवा करते हैं। किंतु वो जो पूजक जिसकी पूजा कर रहा है उसको प्राप्त होएगा। जानती देव व्रता देवा पितृ न जानती पितृ व्रता भूतानि जानते भूतेज्या मज्जाजिनो अपिमाम। क्या कहते हैं, देवव्रता देवान, देवताओं की उपासना करने वाले देवलोक में जाएंगे और फिर होगा क्या, कुछ देर तक अपने कर्मों का फल भोग करके फिर क्या होगा, फिर वो नीचे गिरेंगे। उनकी यही गति होगी, क्योंकि वो देवता भी नश्वर हैं और वो धाम भी नश्वर है, जहां प्रलय होगा वो दोनों ही खत्म। इसलिए ये सनातन नहीं है। इसलिए जिस धाम को प्राप्त हो गए, पितृलोक, देवलोक, स्वर्गलोक, ये क्या होगा, ये दोनों ही नश्वर हैं। जिस देवता की उपासना करते हैं वो भी नश्वर और साथ साथ में वो धाम भी नश्वर। इसलिए पूजा तो चली गई कहां, कृष्ण के पास में किसी न किसी रूप में, किंतु वो जो है देवलोक में गए। क्यों, उनमें ये भावना है कि यही भगवान है, हमारे फल कर्म को देने वाले यही हैं, इसलिए उस लोक को प्राप्त होकर के स्वर्गलोकम विशालम खीने पन्ने मर्तलोकम विशालम, मर्तलोक में फिर उल्टे गिर जाते। इसलिए उनकी उपासना किंतु नित्य नहीं है। यदि वो ये उपासना करते कि ये भगवान के वैभव हैं और इनकी कृपा से हम भगवान की तरफ अग्रसर होंगे तो वो उपासना नित्य हो जाती, क्योंकि भगवान के साथ में संबंध होगा। किंतु ऐसा तो करते नहीं, इसलिए होता है क्या, चाहे किसी भी देवता की उपासना करो, वो भगवान की विभूति हैं, ठीक है उनमें शक्ति है, उनकी पूजा भी भगवान ग्रहण कर लेंगे किसी न किसी रूप में, किस रूप में ग्रहण करेंगे, अविधिपूर्वकम। अविधिपूर्वकम माने क्या, जपन्न देवता जजन्ते श्रद्धयान्वित ते अपि मामेव कंतेव जजन्ते। अविधिपूर्वक हुआ कैसे, हमारा यह शरीर है, भूख लगी है, प्यास लगी है, मुख में पानी दो, मुख में अन्न का ग्रास दो, कोई भी चीज दो, ये जहां पर जैसी जरूरत है उसी के अनुसार में ये विभाग कर देगा। ये इसके बदले में तुम सोचो ये आंख में दूध ढाल दें और परमान्न पेट को चीर करके पेट को दे दें, मुख में देने की क्या जरूरत है, यह गलत बात। किसी पौधे को बचाना है तो उसकी डालियों में, पत्तों में और फूलों में पानी मत दो। पानी कहां दो, जड़ में देने से जहां जैसी जरूरत है वो पहुंच जाएगा, और जैसे फूल में दो तो क्या हुआ, फूल सड़ जाएगा, पत्ते में दोगे तो क्या होगा, नहीं बच सकेगा, पानी जड़ में दो। इसलिए विश्व ब्रह्मांड की जड़ कौन है, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, इस चीज को समझो। इसलिए इनकी उपासना करने से क्या होगा, जदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहां से जा करके फिर लौटना नहीं होता, वहां लौटने का कोई कारण नहीं है, वहां पर जाने से माया वहां है ही नहीं। क्या है वहां? जोग माया है कृष्ण से मिलाने वाली, वहां पर नित्य कृष्ण की सेवा प्राप्त हो जाती है, इसलिए कृष्ण के विस्मरण होने का कोई कारण ही नहीं है। हम कृष्ण को भूल करके इस जगत में आए हैं और भगवान ने हमको शरीर स्थूल और शरीर दे दिया। ये जब शरीर के जो धर्म है, मन के धर्म है, सनातन धर्म नहीं है। आत्मा का जो धर्म है भगवान की सेवा, ये नित्य सनातन है। ये जहां शुद्ध है वहां पर शुद्ध सनातन धर्म है, जहां अशुद्ध है वहां अशुद्ध है, जहां छाया है वहां पर छाया सनातन धर्म है, और जहां कुछ विपरीत है तो वो विपरीत सनातन धर्म है। सभी सनातन धर्म नहीं है। महाजनो जैन गत सपन था। एक समय की बात है, देवलोक असुरों पर विजय प्राप्त किया, प्राप्त करके इंद्र कह रहे हैं यदि हम अपना वज्र नहीं छोड़ते तो दानवों को नहीं परास्त कर सकते। दूसरे दूसरे देवता सब अहंकार में भर कर रहे थे कि यदि मैं नहीं रहता तो इस युद्ध में हम लोगों की जीत नहीं होती, युद्ध का मैं कारण हूं जीत का। इतने में थोड़ी ही देर में एक तेज आकाश से उतरी, सब लोग देखते हैं बड़ी तेज प्रकाश उससे पुंज आ रहा है, तो आकर के एक निर्जन स्थान पर वो उतर आए। इंद्र ने कहा अग्नि देवते तुम जाकर के ये पता लगाओ जी ये तेज क्या है, कहां से उतरा, क्या चीज है। अग्नि देव गए, वो शांत होकर के बैठा था। उन्होंने कहा जी मैं आपका परिचय जानना चाहता हूं, आप कौन हैं? सारे देवताओं ने मिलकर के भेजा है। उन्होंने कहा मैं आप ही का परिचय जानना चाहता हूं, तब मैं अपना परिचय बतलाऊंगा। अग्निदेव ने जरा घमंड से कहा मैं चाहूं तो एक सेकंड के अंदर में सारे पृथ्वी को जला करके खाक कर दूं। वाह आप तो बड़े शक्तिशाली हैं। उसने सूखे हुए एक तीर्ण को दिया, इसको जरा जला दीजिए। तो उन्होंने कहा जिसे ये जलाना तो हमारे लिए अपमान की बात होगी, हम तो सारे विश्व को एक सेकंड के अंदर में जला सकते हैं। अच्छा जरा जलाइए। तो जला नहीं सके, हजार चेष्टा की कुछ नहीं जला। तब वो मुस्कुराने लगा, वो जो शक्ति जो थी, और ये उसको प्रणाम करके लौट आए। इंद्र से बोले, देवताओं से बोले मैं उनको समझ नहीं सका जी ये कौन है। अब पवन देव को भेजा, जो उनका घमंड था कि असुरों को मैंने जीता है, मैं यदि हवा झकझोर दूं तो सारा जगत में प्रलय हो जाएगा। अभी कहां मैं था तो खंड प्रलय हो गया, हवा ऐसी जोर से आई पेड़ उखड़ गए, नगर के नगर उजड़ गए, आदमी कितने मर गए, पशु सब नष्ट हो गए, उथल पुथल हो गया। जब पहुंचे तो उन्होंने पूछा जी आप कौन हैं? उन्होंने कहा जी आप कौन हैं? आ तो आप मुझको नहीं जानते, मैं पवन देव हूं, चाहो तो एक मिनट में विश्व ब्रह्मांड का प्रलय कर दूं, संहार कर दूं। वाह आप में तो बड़ी शक्ति है, इस सूखे हुए तीर्ण को जरा उड़ा दीजिए। तो चेष्टा की, करते 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 हारते थक गए, वो उड़ा ही नहीं। उड़े के कैसा, सबकी शक्ति कौन है जो बैठे हुए हैं, जो शक्ति है वो है, उसने शक्ति इन लोगों से ले ली, कुछ नहीं कर सके। अंत में कोई भी देवता उसका परिचय नहीं पाया, तो इंद्र खुद ही वहां पर ज्यों ही आए त्यों ही शक्ति लुप्त हो गई। वो है ये परमेश्वर है, वो परमेश्वर की शक्ति है, उस परमेश्वर की शक्ति से ये सब कुछ हो रहा है। इस कुछ ये शक्ति के अनुसार में उनकी जो कृष्ण की आराधना है ये नित्य धर्म है। इसलिए जितने देवता लोग भी हैं, ये हनुमान जी शंकर होकर के भी हनुमान के रूप में किसकी सेवा करते हैं? अपने प्रभु राम की। हमारे शंकर जी खुद ही गोपीश्वर बन करके वृंदावन में उनकी सेवा करते हैं, इसलिए ये सनातन धर्म है। क्या इसके भी बहुत से स्तर हैं, बहुत से स्तर हैं। जो सदगुरु अनुभवी होगा वो बतलाएगा जिसके कैसे स्तर हैं, साधारण आदमी नहीं समझ सके। इसलिए पहले ये आप लोग ये समझिए कि कृष्ण की आराधना ही सर्वोत्तम सनातन धर्म है। एक चीज और समझिए, महाभारत युद्ध हुआ, महाभारत युद्ध में नरसंहार हुआ, कितने लोग मारे गए? करोड़ों लोग मरे। दो पक्षों में कितनी, 11 और 7, 18 अक्षौहिणी, 18 अक्षौहिणी माने 40-50 करोड़ आदमी, इतने आदमी युद्ध में मारे गए। केवल एक तरफ में 6 और एक तरफ में 3 आदमी बचे। एक तरफ में 6 कौन? 5 पांडव और कृष्ण, और दूसरी तरफ में कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा, ये 3 बचे, और बाकी दुर्योधन इत्यादि सब सारे मारे गए। नरसंहार हुआ, जितनी बाण विद्याएं थी ये सब लुप्त हो गई, सारी स्त्रियां विधवा हो गई, सारे बच्चे कैसे अनाथ हो गए। तो ये धर्म की प्रतिष्ठा कहां हुई? धर्म की प्रतिष्ठा हुई ना, अधर्म हुआ। इसी चीज को समझना। किंतु कृष्ण कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय, ये क्या धर्म? यही सनातन धर्म प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने क्या किया? असुरों का विनाश किया। जब तक असुर रहेंगे तब तक सनातन धर्म की प्रतिष्ठा नहीं होने देंगे। इसलिए महाभारत युद्ध भी हुआ, किस लिए? सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए। जहां पर दुर्योधन है, जहां दुशासन है, जहां पर कर्ण है, शकुनी है, ऐसे लोग जो हैं पृथ्वी पर रहेंगे, धर्म की स्थापना हो सकती है? वो लोग दूसरों की बहुओं बेटियों को नंगा करना चाहते, ये धर्म है? ये तो धर्म नहीं। वे सभी लोग शंकर की उपासना करते हैं, रावण किसकी उपासना करता था? शंकर जी की ना। 10 शरीर उसको मिल गया। जरासंध बड़ा धार्मिक व्यक्ति था, क्या अपने को सनातनी कहता था? जो आता, जिसको जो मांगता वही दान देता, देवताओं की का पूजन करता, किंतु भगवान और भक्तों का द्रोहाचरण करता, इसलिए उसको असुर कहते हैं। सनातन धर्म का यथार्थ मर्यादा पालन नहीं करता था, इसलिए समझना चाहिए। भगवान के प्रति जिसकी ऐसी भक्ति हो, तैल धारावत अविच्छिन्न गति से उसकी चित्त वृत्तियां भगवान की तरफ में लगे, उसका तन मन वचन सारी चेष्टाएं, भावनाओं की अखिल चेष्टाएं कृष्ण के लिए हो, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, ये शुद्ध सनातन धर्म है। ऐसा कोई उदाहरण है जगत में जिन्होंने अपना तन मन वचन आत्मा शरीर जितनी इंद्रिय हैं सब कुछ भगवान के लिए दे दिया हो? ऐसा कोई है? हनुमान जी हैं, शंकर जी उच्च कोटि के भक्त हैं, किंतु क्या ऐसा कर सके? अपना जूठा कृष्ण राम को दे सकते हैं? नहीं कर सकते। राम को आलिंगन पास में बद्ध करके एक पलंग के ऊपर सो सकते हैं? अपने शरीर से संपूर्ण रूप से उनकी सेवा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यशोदा जी कर सकती हैं? देखो, पुत्र की भांति उनका पालन पोषण करती है, अपने तन मन सब प्रकोष को लगा दिया, किंतु अपने शरीर को पत्नी की जैसा वो सेवा कर सकती हैं कृष्ण की? नहीं कर सकते। ये कौन कर सकता है? केवल गोपियां ही कर सकती हैं। अपना तन या शरीर भी कृष्ण ने कहा नंगी हो जाओ, कोई बात नहीं। अपने अपने पतियों को भी वंचित कर कृष्ण की सेवा कर रही हैं। रुक्मिणी सत्यभामा के साथ में उनकी शादी है, किंतु कोई भी नहीं कहता रुक्मिणी कृष्ण, सत्यभामा कृष्ण। राधे कृष्ण क्यों कहते हैं? रुक्मिणी सत्यभामा के प्रेम में कुछ कमी है, उनके साथ में कृष्ण ने रास नहीं किया, उनको बंसी से बुलाया नहीं। इसलिए सनातन धर्म की पूर्ण प्रतिष्ठा गोपियों में है, ऐसी सेवा कोई भी नहीं कर सका। इसलिए यही सनातन धर्म की सबसे मूल मर्यादा है, इस चीज को समझो। ऐसा कोई न भूतो न भविष्यति, ऐसी सेवा कोई नहीं कर सकता, केवल गोपियां ही कर सकती हैं। इसलिए कृष्ण ने हार करके उनसे कहा, क्या कहा, मैं सबकी किसी का जगत में ऋणी नहीं, केवल तुम्हारे प्रेम का ऋणी हूं। तुम्हारे जैसा अपने पति को, भाई बंधु सबको छोड़ करके, अपने देह धर्म को छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे लिए अपने किसी भक्त को भी, साधारण जो आज हरि नाम कर रहा है उसको भी नहीं छोड़ सकता। रुक्मिणी सत्यभामा को छोड़ेंगे, न जसोदा मैया को छोड़ेंगे, न सखा को छोड़ेंगे, किसको छोड़ेंगे? किसी को नहीं छोड़ने तो उनका ऋणी बन जाएंगे। यदि गोपियां कहें ये ऋणी क्यों रहोगे, ऋण चुका दो, तो वो कहते हैं यदि मैं कहूं जो कुछ तुम लोगों को दे दें तो कुछ मांगो, तो वो मांगेंगे कि आपकी सेवा हम करें और हमारे जैसी तुम हमारी सेवा करो। कर सकते हैं? जैसे गोपियां कृष्ण की सेवा करती हैं वैसे कृष्ण गोपियों की सेवा कर सकते हैं? उल्टा, हमने 100 रुपया दिया उधार, आपको शुद्ध समेत देना चाहिए ना। अच्छा, शुद्ध समय नहीं देते हैं तो अंततः 100 रुपया तो हमारा लौटा दीजिए। तो गोपियों ने जैसे 100 पूर्ण सेवा पूर्णांक रूप में कृष्ण की सेवा की, कृष्ण उसके आधे के पुनिराध कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इसलिए उनके ऋणी बने। ये सनातन धर्म है, इस चीज को समझो। सनातन धर्म कहां से आरंभ होता है? कुछ शरीर के प्रति जो हमारा धर्म है वहीं से आरंभ होता है, किंतु सनातन धर्म ने, सनातन धर्म की छाया है। नश्वर चीजों को ही पूजा हम जो करते हैं, कुछ रूप में सनातन धर्म की ये छाया हो सकता है। जैसे दधीची महाराज जी का नाम जानते हैं, महर्षि दधीची, जब वृत्तासुर नहीं मरा इंद्र इत्यादि के द्वारा, तो देवता लोग तपस्या किया, ब्रह्मा जी ने कहा जब इसको मारने के लिए वज्र बनाना पड़ेगा, ये वज्र कैसे बैठेगी? बहुत लाखों वर्षों तक दधीची जी ने, ऋषि ने तपस्या की है, उनका हाड़ जो है वो वज्र के समान है, उनको जीवित रहते हुए भी उनसे मांग करके ले आओ हाड़। मांगने के लिए गए जी, आप अपना शरीर हमें दे दीजिए, अपना हाड़ दे दीजिए, तो हंसने लगे, बड़े स्वार्थी तुम लोग, अपने बचाव के लिए और हमारा शरीर मांग रहे हो, खैर ठीक है। उन्हें जाओ 2-4 गायों को ले आओ और अपने शरीर में दही और बूरा लपटा दिया, और लपटा करके वो चाटने लगी, चाटते चाटते सब कुछ चाट गई, केवल हड्डी रह गई। ऐसा कौन कर सकता है? मतलब एक कबूतर के लिए हमारे शिवी महाराज ने क्या किया, अपना शरीर काट काट करके वजन और उनको दिया। ऐसा कौन दानी हो सकता है? किंतु ये क्या चीज है क्या, इस चीज को समझ। सनातन धर्म तो है, किंतु सनातन धर्म नहीं, उसकी छाया है, विकृत छाया। उसे क्या होगा, उसे होगा क्या उस दान से? स्वर्गलोक में जाएंगे कुछ दिन तक अपने कर्मों का फल भोग करके, फिर वहां औंधे मुख नीचे लौटेंगे, यही तो फल उसका है। इसलिए ये सनातन धर्म नहीं, उसकी बल्कि छाया है, इस चीज को समझो। इसके बाद में आप लोगों ने और भी सुनागा, एक राजा हरिश्चंद्र थे, स्वप्न में मांगे हुए दान को उन्होंने विश्वामित्र को दिया। नहीं, स्वच्छ का बात, स्वप्न का बात सत्य नहीं होता। दूसरे दिन आकर के विश्वामित्र खुद हो आए, बोला जैसे आपने स्वप्न में हमको कुछ दिया, तो हमको तो ऐसा कुछ नहीं मालूम होता। अरे अभी तो रात ही का स्वप्न है, स्वप्न में मैंने आपसे राज्य मांगा, आपने राज्य दिया, तो ठीक है अब राज्य दिया, संकल्प करो। उन्होंने संकल्प किया, ये सारा राज्य आपको दे दिया। उन्होंने संकल्प कराने का दक्षिणा दो, 10,000 स्वर्ण मुद्रा। उन्होंने कहा जी खजांची स्वर्ण मुद्रा दे दो। उन्होंने कहा जी तुमने राज्य दिया, खजाना तेरे बाप का अब रहा, अब तो ये मेरा खजाना हो गया। तुम्हारा अब कोई चीज नहीं रहा, तुम्हारा शरीर है, अब इसको बेच करके लाओ और हमारे राज्य में मत बेचना। उनका सारा पृथ्वी में राज्य, कहां बेचेंगे? बुद्धि चकरा गई, अब मैं क्या करूं? फिर उन्होंने ही कहा जी जाओ काशी में, वो त्रिशूल के ऊपर में खड़ी है, पृथ्वी से संपर्क नहीं, वहीं पर बेच करके लाओ। गए वहां, अपने को बेचा, आधा मिला, फिर अपनी पत्नी को और अपने बेटे को बेचा तो और 5,000 या 10,000 स्वर्ण मुद्रा लेकर के उनको दिया, तो चले गए। और रात में सांप काटा उसके बेटे को, वो कफन नहीं, ऐसे ही बेटे को लेकर के रोती हुई अंधकार में, वर्षा हो रही है, पहुंची घाट पर। हरिश्चंद्र ने कहा यहां पर कोई भी क्रिया बिना दिए हुए टैक्स दिए हुए नहीं होगी। और उन्होंने जब बिजली चमकी कड़की तो उन्होंने देखा जी हमारा बेटा, अरे मैं हरिश्चंद्र राजा और हमारी ये पत्नी, हमारा ये बेटा मर गया, हाय हाय करने लगे। अभी तक राजा का भाव नहीं गया, ममता नहीं गई, और ये मेरा बेटा है और ये मेरी स्त्री है, ये भी नहीं गई। और जब बेच ही दिया तो वो अब उनका रहा कैसे? किंतु ये ममता नहीं गई। अंत में उन्होंने कहा जे कुछ देना पड़ेगा, तो वो चीरने लगी अपने कपड़े को। उसी समय में धर्मराज, विष्णु और सब देवता लोग आए। उन्होंने कहा जी अब वर मांगो। विश्वामित्र जी ने कहा जी तुमको हम तुम्हारा अभिमान दूर करने के लिए, सनातन धर्म शिक्षा के लिए मैं आया था। संसार के प्रति जो तुम्हारा धर्म है ये ठीक है, किंतु उसका एक कौड़ी काना भी मूल्य नहीं। फूटी हुई कौड़ी होती है ना, उसके बराबर मूल्य नहीं। इसे भगवान का संबंध कहाँ है? तुम्हारा है क्या जो दान करो? ये पृथ्वी तुम्हारी थी जो दान किया, तुम लेकर के जन्मे थे, ना कि तुम्हारे बाप दादे लेकर के जन्मे थे। अब मरेगा तो लेकर के जाएगा, इसलिए तुम्हारी नहीं है, इसलिए तुम देने का भी अधिकारी नहीं। तुम सोचो जो हम मैं आत्मा हूं, मैं इस ज्ञान देने के लिए आया और इसे तुम भगवान की सेवा करो, ये सनातन धर्म नहीं, ये सनातन धर्म है। तब उनके समझ में आया ये सनातन धर्म है, इस चीज को समझो। वो सनातन धर्म नहीं है, किंतु हमारे अधिकांश लोग, 99% लोग ये समझते हैं कि राजा हरिश्चंद्र सनातन धर्म के मूल है। ऐसा मत समझो, आत्मधर्म उनमें कहां था? शरीर के प्रति धर्म, उनका दान, और वो जाएंगे कहां? स्वर्गलोक में जाकर के फिर गिर पड़ेंगे। गोलोक वृंदावन में कृष्ण से संबंध था, अजर अमर तो होंगे नहीं, ब्रह्मलोक में तो जाएंगे नहीं। जदगत्वा निवर्तन्ते, नहीं हो सकता। इसलिए सनातन धर्म को सचो। हनुमान जी सनातन धर्म के आदर्श हैं, ठीक है, किंतु पांडवों को जो सनातन धर्म है उससे इनका धर्म जो है थोड़ा सा निम्न है। अर्जुन और कृष्ण एक पलंग पर सोते हैं, है ना, एक थाल में जूठे खाते हैं। अर्जुन अपना जूठा भी कृष्ण को खिला सकते हैं, उनके सखा हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए उनके रथ को हांकते हैं, उनके घोड़ों को धोते हैं। कृष्ण को घोड़े धोने की क्या जरूरत, अर्जुन को प्रसन्न करने के लिए। और अपनी बहन का विवाह भी किसे कर दिया? उनके साले बन गए, बतलाओ तो। ये सनातन कितना हो गया? 1 घंटा। ये है सनातन धर्म। किंतु इससे भी अधिक क्या है? उद्धव जी और ऊंचे हैं, उनके मित्र हैं, सखा हैं, सभी कुछ उनके हैं। और ऐसे उद्धव को उन्होंने ब्रज में भेजा, किस लिए? प्रेम की पाठशाला में अभी एडमिशन लेने के लिए, पढ़ने के लिए छात्र योग्य हैं कि नहीं, ये गोपियां जो वहां के प्रिंसिपल हैं या आचार्य हैं वो लोग विचार करके देखेंगे। एडमिशन के लिए गए किंतु एडमिशन नहीं लिया। देखा ये इतना बहुत बड़ा ये प्रेम, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ा सुपंडित। कृष्ण भी 2.5 अक्षर में 2 अक्षर पढ़े थे, आधा अक्षर नहीं पढ़ सके। इसलिए उनको जन्म लेकर के महाप्रभु के रूप में अढ़ाई अक्षर में से आधा अक्षर को पढ़ना पड़ा किससे, विशाखा जी से। ये सनातन धर्म की ऊंची चीज है, इस चीज को समझिए। जब तक नहीं समझ में आएगा, सनातन धर्म को नहीं समझ सकेंगे, विभिन्न देवताओं की उपासना होगी और उसका फल भी आप ही को भोगना पड़ेगा, वो नहीं। इन चीजों को जानना चाहिए, अंधकार दूर हो जाए, आत्मा का प्रकाश हो जाए, आत्मा के द्वारा परमात्मा, जो परमात्मा की जो परम उच्च स्थिति है वो है कृष्ण, वही जो मैया उसको बांधती है, गोपियां अपने चरणों की महावर उनसे पहनवाती हैं, और वो क्या करती हैं, कृष्ण के शीर में उस महावर को लेकर के छाप देती हैं और कृष्ण उसको धारण करते हैं। ये है सनातन धर्म। बोलो सनातन धर्म की। आधा अक्षर वो महाभाव है जो कृष्ण में नहीं है, मादन भाव, जो कृष्ण को देख करके गोपियां उन्मत्त हो जाती हैं, गोपियों को देख करके कृष्ण उन्मत्त नहीं हो पाते। वो क्यों होता है, उनमें वो भाव है प्रेम का। कृष्ण तो भगवान है ठीक है, किंतु कृष्ण को देख करके कंस को, जरासंध को, दुर्योधन को क्रोध क्यों होता है, प्रेम नहीं है। इसलिए कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वही हमारे लिए प्रयोजन है, वही हमारे लिए साध्य है। इस चीज को समझा, ये सनातन धर्म, उसको हम जब तक नहीं हमारे अंदर में आएगा, कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम नहीं होगा, तो कृष्ण में वो महाभाव नहीं है जो राधा जी में है। इसी को पाने के लिए ललचते हैं राधा जी का अंग कांति और उनके अंदर में जो सेवा की प्रवृत्ति है, जिसको मुदनाख्य मादनाख्य भाव कहते हैं, प्राप्ति करके तब इन चीज का आस्वादन किया। बोलो रसराज कृष्ण की जय, महाभाव स्वरूपा राधिका जी की जय, सनातन धर्म की जय, गौर प्रमाण। Yeah.